हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ दिनों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये GPS है। फिर एक दिन मैंने अमल को इस बारे में बात करते हुए सुना था कि ऐसा GPS घर में हर शख्स के पैरों पर बंधा हुआ है, इनायत ने कहा। जिब्रान इनायत को देखते हुए कहता है, इनायत, तुम्हें अपने पैरों से इसे हटाना होगा। तुम्हें GPS को अपने पैरों से हटाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, वरना वो हमें ट्रैक कर लेगा। पर तभी अचानक से एक तेज रोशनी उनकी आंखों के सामने चमकती है। वो सामने खड़ी किसी गाड़ी की हेडलाइट थी जो ठीक उनके सामने आकर रुकी थी, और अचानक से रोशनी पड़ने पर उन दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। 2 मिनट बाद उस सामने खड़ी गाड़ी की रोशनी बंद होती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी धीरे धीरे जिब्रान की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जिब्रान और इनायत को उसकी शक्ल तो नहीं नजर आ रही थी, पर वो चौड़ी कदकाठी वाला आदमी जिब्रान की गाड़ी के पास आता है और उसकी गाड़ी के शीशे पर दस्तक देता है। जिब्रान घबराते हुए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है तो वो आदमी झांक कर अंदर बैठी इनायत को देखता है, जो दुल्हन के जोड़े में घबराए हुए चेहरे के साथ बैठी थी। वो आदमी इनायत को देखते हुए कहता है, आप इनायत हैं, हवेली रियाज का कमरा। रियाज अपने कमरे में तैयार हो रहा था। 1 घंटे बाद उसे इनायत के साथ महफिल में पहुंचना था। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और जन्नत अंदर आते हुए घबराती है और कहती है, भाईजान भाईजान जल्दी चलिए, सबा खाला को कुछ हो गया है, मुराद भाई ने एम्बुलेंस बुलवाई है, आप जल्दी चलिए। रियाज के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलता है। वो कमरे से निकलकर जन्नत के साथ सीधे हॉल में आता है, जहाँ पर सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। मुराद घोरते हुए सारे लोगों को एक तरफ करता है और सोफे के पास पहुँचता है, जहाँ पर अमल दाईजान का सर अपने गोद में रखकर सिर्फ रोए जा रही थी। चाचा उनके पैरों की मालिश कर रही थी और इनायत की अम्मी भी उनके हाथों को मल रही थी। रियाज देखता है कि दाईजान की सांस अटक अटक कर चल रही है, उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। रियाज जल्दी से दाईजान के पास आता है और उनके चेहरे को गौर से देखने लगता है। अमल रोते हुए कहती है, भाईजान मेरी अम्मी को क्या हो गया? भाईजान मेरी अम्मी को बचा लीजिए, इन्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? वहाँ पर सब लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, पर रियाज ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया। वो धीरे से दाईजान का सर अपनी गोद में रखता है और उन्हें देखने लगता है। वो जिस तरीके से अटक रही थी और जिस तरीके से उनकी आंखें बार बार बंद खुल रही थीं, उससे उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो हुआ है। वो जल्दी से मुराद को देखता है और कहता है, मुराद जल्दी से रसोई घर से बड़ा वाला चम्मच लेकर आओ। मुराद ने रियाज की बात सुनने के साथ ही अपने कदम रसोई घर की तरफ बढ़ा लिए थे। वो रसोई घर से बड़ा वाला चम्मच लेकर आ जाता है। रियाज दाईजान को सबसे पहले तो पीठ के बल सहारा देकर लिटाता है और उसके बाद वो मुराद से कहता है, जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा तुम चम्मच को सीधे इनके हलक में डाल देना। मुराद घबरा तो रहा था, लेकिन उसने रियाज के ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी समझा। वहाँ पर सब लोग हैरान थे और सब लोग रियाज को ये ना करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन रियाज ने किसी की ना सुनी। उसने दाईजान के जबड़े को नीचे से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से जबरदस्ती उनके दांतों को खोलने लगा। बहुत मुश्किल से रियाज ने उनके दोनों दांतों को खींचकर उनके मुंह को थोड़ा सा खोला, और जैसे ही मुंह खुलता है मुराद बड़े वाले चम्मच को उनके हलक तक डालकर जोर से हिलने लगता है। ऐसा करने के 2 मिनट बाद ही दाईजान जोरों से उल्टी कर देती है और उसी के साथ उनके गले में फंसा हुआ वो सारा खाना बाहर निकल आता है। दाईजान ने बहुत साली उल्टी की थी, जो उन्होंने खाया था वो सारा फर्श पर था, और एक बार सारा खाया हुआ बाहर निकलने के बाद वो जोरों से सांस लेने लगती है। उनकी सांस उखड़कर तेजी से चलने लगी थी और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन अब उनकी सांसें चौक नहीं हो रही थी। मुराद के सारे कपड़े गंदे हो गए थे और दाईजान के भी सारे कपड़े गंदे हो गए थे, पर इस समय शुक्र की बात ये थी कि दाईजान सही सलामत थी। अमल जल्दी से अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगती है। उन्हें संभालने के बाद रियाज उन्हें कमरे में ले जाता है और आराम से लिटाता है। थोड़ी देर बाद दाईजान अपने कपड़े बदल चुकी थी और रियाज भी दूसरे कपड़ों में था। दाईजान उन लोगों की तरफ देखती है जो अब ये जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या खाया था। दाईजान ने बताया कि उन्होंने सिंपल खाना ही खाया था, जो कि सबके लिए बनाया गया था, लेकिन सबको अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी थी, यहाँ तक कि दाईजान खुद भी बहुत परेशान हो रही थी। रियाज ने सबको जाने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। रियाज और मुराद इस वक्त अपने कमरे में था और मुराद कहता है, क्या बात है भाईजान, आपको क्या सोच रहे हैं, मैंने देखा था दाई जान के कमरे में आपके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। कोई बात है, दाई जान को जहर दिया गया था। जैसे ही रियाज ने ये कहा, मुराद चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, क्या दाई जान को कौन जहर देगा और उन्हें जहर देकर किसी को क्या हासिल होगा? मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में खाना खाया होगा, जिस वजह से खाना उनके गले में अटक गया होगा। पर रियाज ना में सर हिलाता है और बहुत सोचने वाले अंदाज में कहता है, नहीं, ये जहर ही था। मुझे अच्छी तरह से पहचान है जहर की और जहरीले इंसान की भी। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ बुलाओ और उनसे कहो मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। मुराद कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजता है। मुराद देखता है तो ये उस सिक्योरिटी गार्ड का फोन था जो इस समय गोदाम में मौजूद था, जिस गोदाम में जिब्रान को रखा गया था। मुराद फोन उठाकर सामने बात सुनता है और उसकी आंखें हैरान से बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से फोन काट देता है और रियाज की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रियाज को कुछ शक होता है, लेकिन वो फिर भी पूछता है, क्या बात है, क्या हुआ? मुराद घबराया हुआ था, लेकिन उसे ये बताना ही था, भाई जिब्रान भाग गया। भाग गया? हमारी कैद से भाग गया? रियाज ने धीरे धीरे और अपने दांत पीसते हुए मुराद को देखते हुए कहा। तो मुराद घबराते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जी भाई, अभी अभी सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया था और उसने बताया कि जिब्रान भाग गया है। दरअसल आज दोपहर को गोदाम पर हमला हुआ था और उन सबको नशीली दवाई देकर बेहोश कर दिया गया था। जब वो लोग होश में आए तो देखा कि जिब्रान अपनी जगह पर नहीं है और वो वहाँ से भाग चुका है। मुराद की पूरी बात सुनकर रियाज का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर भटक रही थी, शायद वो कुछ सोच रहा था। और तभी एकदम से उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। वो तेज कदमों से निकलता हुआ इनायत के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि इनायत तो अपनी अम्मी के कमरे में तैयार हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी से उसकी अम्मी के कमरे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है, वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे खिड़की के पास कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ नजर आता है।
उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कसी हुई थी और चेहरे की नसें दिख रही थी। उसके नसें चटकने की आवाज़ पीछे खड़े मुराद को भी सुनाई दे रही थी और उसने अपने थूक को निगलते हुए मन ही मन में कहा, इनायत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। खिड़की से आई हवाओं के झोंके से ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ पेपर फड़फड़ा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई, वो तेज़ कदमों से ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और वो पेपर उठाता है। वो उसे पढ़ता है, जिसमें इनायत ने अपने भागने की वजह लिखी हुई थी, और उसे पढ़कर उसके हाथों की पकड़ उस पेपर पर और कस गई। उसने एक ही मिनट उस पेपर को इस तरीके से मुट्ठी में दबाया कि उस पेपर में अगर जान होती तो बेचारा फिर से मर जाता। रियाज गुस्से में मुराद की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, शेरा कहाँ है? भाई, शेरा अपने घायल आदमियों को लेकर अस्पताल की तरफ गया है। उसने बताया कि कुछ आदमी हमलावरों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए थे, वो उन्हें लेकर अस्पताल गया हुआ है। रियाज अपनी फूलती हुई सांसों के साथ गुस्से में मुराद को देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, शेरा को कहो अभी इसी वक्त उस गोदाम में बम ब्लास्ट करके उसे उड़ा दे, एक भी सबूत नहीं मिलने चाहिए। मुझे पता है ये किसका काम है। मुराद हैरानी से कहता है, किसका भाई? अगर आप उसको जानते हैं तो फिर क्या वो आपको नहीं जानता है? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि आपसे उलझने की कोशिश कर सके, वो भी इस तरीके से कि उसने जिब्रान को आपकी कैद से बाहर निकाल लिया और हमारे घर के अंदर भी घुस गया। ये कौन हो सकता है? नवीन अहमद, रियाज ने दांत पीसते हुए कहा। तो मुराद हैरान रह जाता है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से कहता है, नवीन अहमद, वो आपका दुश्मन, जो बिजनेस में भी आपके दुश्मन है और माफिया में भी, उसने ये सब किया है? और कौन हो सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो मुझसे उलझ सके? उसी ने अपने आदमियों को हमारे गोदाम में भेजा होगा और हमारे आदमियों को बेहोश करके उसी ने ही जिब्रान को वहां से बाहर निकाला होगा। उसी ने जिब्रान को हवेली तक पहुंचने के बारे में बताया होगा और हम लोगों को उलझाए रखने के लिए उसी ने खाने में जहर मिलाया होगा ताकि घर का कोई एक इंसान खाना बीमार पड़ जाए और हम सबका ध्यान उसकी तरफ चल जाए और पीछे से जिब्रान इनायत को लेकर भाग सके। पर इस समय सवाल ये है कि क्या इनायत को इन सब के बारे में पता था? नहीं, उसे पता नहीं चल सकता है क्योंकि उसका फोन टूट चुका था। इसका मतलब उसे यहीं पर खबर मिली है और उसी ने यहीं पर खड़े खड़े फैसला लिया है। रियाज ने गुस्से में दांत पीसते हुए और अपने गुस्से को हद तक कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन इस समय वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे शांत करें। बाहर सारे मेहमान आ चुके थे, मीडिया वाले मौजूद थे, लेकिन इस वक्त दुल्हन गायब थी। इसका ये मतलब है कि रियाज की पूरे शहर में बदनामी होगी और माफिया में उसका नाम खराब होगा, और यही तो नवीन अहमद चाहता था। मुराद, जल्दी से जल्दी मुझे इस पूरी हवेली के सीसीटीवी फुटेज देखनी है, और हाँ, हमने जिनके कमरे में भी हिडन कैमरा लगवाए हैं, मुझे उन सब के फुटेज भी चाहिए। रियाज ने जैसे ही ये कहा, मुराद हैरानी से कहता है, भाईजान, हिडन कैमरा मतलब? मैं समझा नहीं। मुराद, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इस वक्त माफिया से जुड़ा हुआ हूँ। तुम्हें पता है, मेरे इस वक्त दोस्त से ज्यादा दुश्मन है, और ऐसे में जब मेरे घर में कोई फंक्शन होगा तो तुम्हें क्या लगता है कोई दुश्मन यहाँ तक आ नहीं सकता है? इसीलिए मैंने सिक्योरिटी के लिए घर के हर मेंबर के कमरे में एक सिक्योरिटी कैमरा लगवाया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ हमारे सिक्योरिटी हेड को पता है। तो जाओ, जाकर उनसे उस कैमरे की सारी फुटेज लेकर आओ। रियाज ने इन सबको जल्द से जल्द खुद के तरीके से हैंडल करने का सोचा। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और मुराद लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चला रहा था। उसने देखा कि किस तरीके से उसकी माँ के फोन पर एक फोन आता है, और इनायत उस फोन पर बात करते हुए कितना डर रही थी, घबरा रही थी और रो भी रही थी। उसके बाद उसने किस तरीके से कपड़ों की रस्सी बनाई और कैसे वो नोट्स लिखकर टेबल के ऊपर छोड़कर उस रस्सी के सहारे उतरकर नीचे चली जाती है, और उसके बाद पिछले दरवाजे से वो यहाँ से किस तरीके से खुद को एक शॉल में छुपाकर भाग जाती है। और ये सब उस दौरान हुआ था जिस दौरान सारा परिवार दाई जान के लिए परेशान हो रहा था। रियाज ने गुस्से में लैपटॉप को बंद कर दिया। एक लड़की उसके परिवार की प्रतिष्ठा को इस तरीके से मिट्टी में मिलाकर भाग गई। उसकी बीवी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसके दुश्मन इतनी बड़ी साजिश रच जाएंगे, इस बात का अंदाज़ा उसे अब जाकर हो रहा था। बाहर सारे मेहमान आ गए थे और सब इनायत और रियाज के आने का इंतज़ार कर रहे थे। रियाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतने कम समय में वो इनायत को कैसे ढूंढेगा? लेकिन तभी उसके दिमाग में ट्रैकर का ख्याल आता है। वो दोबारा से लैपटॉप ऑन करता है और वहाँ पर कुछ सर्च करने लगता है। कुछ करने के साथ ही उसकी आंखों में कुछ चमक सी आ जाती है। वो मुराद को देखते हुए कहता है, जल्दी शेरा को फ़ोन करो।